प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है।
ओम शांति। हम सभी के बीच विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भ्राता आदरणीय निर्वैर भाई जी उपस्थित हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निर्वैर भाई जी के परिचय से आप परिचित होंगे ही, फिर भी थोड़ा सा परिचय आपको बताना चाहेंगे कि आप 9 वर्ष तक इंडियन नेवी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में कार्य किया है। बचपन से ही आपको आध्यात्मिकता में रुचि रही, इस कारण आपका स्वामी विवेकानंद जी की तरफ काफी खिंचाव रहा। आपने 1959 में इस विश्वविद्यालय के संपर्क में आए पिताश्री ब्रह्मा बाबा तथा अन्य महारथियों के संपर्क में आने के कारण आपने अपनी संपूर्ण जीवन ईश्वरी सेवा में समर्पित की। आपने अपनी अनोखी विधियों से कई सेमिनारों में लेक्चर्स करके सभी को प्रभावित किया है। आप वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल एग्जीबिशंस एवं स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी भी स्थापन की है, आप उनके भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपने विदेशों में भी कई स्थानों पर सेवाएं की हैं, आपके टीवी रेडियो प्रेस आदि में भी इंटरव्यू हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी एवं ग्लोबल हॉस्पिटल के आप मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं, आप सेक्रेटरी ऑफ जनरल ब्रह्मा कुमारी हैं, आपने कई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में अध्यक्षता को भी पूर्ण रीति से निभाया है। ज्ञान सरोवर एवं जिस हॉल में आप सभी बैठे हुए हैं डायमंड हॉल, इसमें भी आपने बनाने के लिए अहम भूमिका को निभाया है। ईश्वरीय सेवाओं में आपके विस्तार को अगर देखा जाए तो आपका काफी योगदान रहा है। आप द वर्ल्ड रिन्यूअल जो मैगजीन निकलती है उसके एडिटर भी हैं, अपने अनुभवों से आपने अनेकों को प्रभावित किया है। आपके लिए इतना जरूर कहेंगे कि मीठे मधुबन की शान आप हो, प्यारे फरिश्तों की पहचान आपको, दिल की जुबान ये कहती है कि ब्राह्मण परिवार की जान आप हो, ब्राह्मण परिवार की जान आप हो। साथ साथ इतना और कहूंगी कि ऊंच और श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कारों के धनी भी आप हैं, इसलिए आज हमें विषय पर स्पष्ट करेंगे संस्कारों को परिवर्तन कैसे किया जाए। आदरणीय भ्राता निर्वैर से।
ओम शांति। मैं सोच रहा था बाबा ने माताओं को आगे रखा है और बहनें फिर भाइयों को आगे रखती हैं, वंडरफुल। ये है इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की सच्ची पहचान कि भाई बहनों को आगे रखते हैं, बहनें भाइयों को आगे बढ़ाती हैं, उससे दोनों आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले मैं हमारी दादी रत्नमयनी को धन्यवाद देता हूं और साथ में सरला बहन मैसाना वाली, जिन्होंने खास याद किया कि माताओं की भट्ठी में आपका क्लास होना चाहिए। मैंने कहा क्लास तो होता है टीचर का, तो वो तो बाबा का ही क्लास होता है, पर माताओं से मिलने का मौका जरूर लूंगा मैं। तो पहले तो बाबा के दिनों का माताओं का एक गीत हम सुनेंगे, फिर मैं आपको क्लास जो भी है जो विचार हैं, क्योंकि टॉपिक भी दी हुई है, बहुत अच्छी टॉपिक है, संस्कार कैसे मिटें और संस्कार परिवर्तन कैसे हो। अब ये टॉपिक तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं समझता हूं कुछ बाबा के दिनों की कुछ मम्मा के दिनों की बातें आप लोगों को सुना करके संस्कार परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे और लास्ट में थोड़ा योग भी करेंगे। तो पहले एक गीत आप माताओं की महिमा का सुनना चाहता हूं मैं। भाई जी तैयार हैं? सुनी अपनी महिमा। एक नजर से स्वर्ग बन जाता। सबसे पहले तो आप सब बहनों का माताओं का कितना बड़ा भाग्य है, इस बार कुमारों की बट्ठी नहीं रखी है। मालूम है आपको, मेरे पास चिट्ठियां आती रहती कुमारों की कि हमारी बट्ठी क्यों नहीं रखी है। खास माताओं की बट्ठी का आयोजन किया है तो ये तो बाबा की कमाल कहो, क्योंकि बाबा को माताओं के लिए बहुत बहुत प्यार भी है रिगार्ड भी है। साकार बाबा के दिनों की बातें याद आती हैं। बाबा कहते थे जिस सेंटर पर माताएं नहीं हैं वो सेंटर हरा भरा नहीं है, सूखा सूखा है। क्यों? क्योंकि माताओं को एक स्वाभाविक संस्कार मिला हुआ है अनादिकाल से। आदि अनादि काल से मिला हुआ है, वो है पालना करने का। पालना का संस्कार माताओं में विशेष, अन्य बहनों में ज्ञान का संस्कार बहुत होता है, पालना का थोड़ा उनको सहयोग लेना पड़ता है। भाइयों का बाहर की सेवा का बहुत संस्कार होता है, वो चैन से नहीं बैठ सकते। एक प्रदर्शनी करेंगे, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेला करेंगे, और बाबा भी नचाता रहता था। हमें भी साकार बाबा के दिनों का विशेष अनुभव। बॉम्बे में रहते थे 15 दिन बाहर सेवा के लिए, 15 दिन बॉम्बे, तो विश्व परिवर्तन में हरेक वर्ग का और हरेक आयु वाले, और इसके साथ साथ माताओं का अपना पार्ट, बहनों का अपना पार्ट, बुजुर्गों का अपना पार्ट, भाइयों का अपना पार्ट, और बच्चे भी कम नहीं है। बच्चे भी कमाल करते हैं, लेकिन अभी आज का जो विषय है खास आपकी बट्ठी के लिए, क्योंकि आप सब बहनें माताएं बट्ठी के लिए आए हैं और बहुत उमंग से आए हैं, ये मुझे पता है। दौड़ दौड़ कर आए हैं, समय पर पहुंचे हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए। बट्ठी माना ही खास विशेष अभ्यास, ऐसा अभ्यास जिस अभ्यास के फल स्वरूप विशेष परिवर्तन आए। सहज योग, सरल योग, वो सब करते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई पास्ट के, हां पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी आदत, इच्छा होते हुए भी बदलती नहीं है, चाहते हैं कि ये ना हो। कोई ना कोई ऐसी बात जीवन की उड़ती कला को वापस ले आती है। बाबा के बच्चों के मन में उमंग बहुत होता है, बाबा की वाणी सुनते हैं तो उड़ने का, उड़ती कला में जाने का बहुत उमंग आता है। कुछ दिन उड़ना भी शुरू कर देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, सदा चेहरा खिला रहता है, नैनों में खुमारी रहती है, और परकंपन इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि जहां भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, उनको प्रभावित करते हैं। फिर चलते चलते कोई पुरानी संस्कार की बात बीच में आकर के विघ्न बन जाती। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या ऐसी बातें होती हैं, वो हर एक व्यक्तिगत स्वयं समझ सकते हैं, क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है, ईश्वरी ज्ञान जो है, वो इतना स्पष्ट है, लक्ष्य इतना स्पष्ट है, उसको सामने रखें तो वो एक आईने की तरह है। उस आईने में नजर आता है कि बाबा चाहता ये है, मेरी भी इच्छा ये बनने की है, ये करने की है, ये धारणा लाने की है, पर अभी तक मेरे संकल्प में ये कमजोरी है, मेरी वाणी में ये मिठास की कमी है, मेरी दृष्टि में अभी भी थोड़ी बहुत ऐसी, क्या कहें, शुभ और शुद्ध नहीं है दृष्टि, थोड़ा उसमें और परिवर्तन चाहिए, थोड़ा 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 नजर आता है। पर कोई एक आधा संस्कार है, जैसे विशेष संस्कार, माताओं का विशेष संस्कार क्या होता है, किस बात का संस्कार है, पालना का, तो विशेष संस्कार है पालना का, जिसके फलस्वरूप जिन बच्चों की आपने पालना की होगी लौकिक रीत से भी और अलौकिक रीत से भी, वो आपको कभी भूलेंगे नहीं, चाहे कितने बड़े हो जाएं, किस पोस्ट पर जाकर के पहुंच। लेकिन कोई एक संस्कार अपना ऐसा होता है, हर एक आत्मा में ये थोड़ी ऐसी बात होती है, चाहे बहनें हों चाहे भाई हों, एक विशेष संस्कार शुभ होगा, हाँ पॉजिटिव, और एक कोई नेगेटिव होगा, और वो जो नेगेटिव होगा वो बार बार आपकी सारी की कराई मेहनत पे पानी फेर देता है। जैसे बताया ना, उड़ती कला में जाते जाते फिर एकदम जल्दी से प्लेन ग्राउंड पे आ जाता है। तो वो अपने दिल से जब तक हमने उसको परखा नहीं है, खुद हमने फील नहीं किया है कि ये संस्कार मेरा जो है मुझे क्या कहें, तकलीफ देने वाला है, दुख देने वाला है, हैरान करने वाला है, इसको अगर मैंने छोड़ा नहीं, इसको अगर मैंने मिटाया नहीं, तो मेरा जो लक्ष्य है, आज की मुरली के अनुसार क्या लक्ष्य था, पहले पहले बाबा का जो मुरली का सार था, 21 जन्म के लिए क्या प्राप्ति करनी है, सत्ययुग त्रेता में जीवन मुक्ति की, मुक्ति तो सारी दुनिया को मिलने वाली है, लेकिन सत्ययुगी डबल ताजधारी बनने का जो संकल्प है उसमें कमी पड़ जाती है। सत्ययुग आद में आए, बीच में आए या त्रेता के अंत में आए, बाबा ने कहा त्रेता के अंत तक सभी आएंगे, जो चले भी जाते हैं बीच में वो भी वापस आ जाएंगे, लेकिन जो भट्ठी में आने वाले हैं वो उस लिस्ट में नहीं है। भट्ठी में आने वाले तो सबसे पहले आने वालों में है ना, तो जो सबसे पहले आने वाले हैं, माताओं को खास मैं सामने रख करके बात कर रहा हूं, बहनों को, कि सभी बहनें माताएं खास होली पर रास करती हैं, करते हैं अच्छा, और माता के जो दिन आते हैं उस समय गुजरात की बहनें क्या करती हैं, गरबा रास करती हैं। अगर वो ताल से ताल ना मिले, एक दो के साथ ना मिले, तो गरबा की जगह कौन सी रास हो जाती है, गड़बड़ रास। तो अभी ये सोचने की बात है कि हमें विशेष अपने अंदर थोड़ा झांकना होगा। आज की जो क्लास है, क्योंकि भट्ठी है और ऐसा भट्ठी में आने का लक्ष्य है कि हमारा ऐसा परिवर्तन हो जो हम चाहते हैं, जो हमारी आंतरिक इच्छा है, तो पहले मैं आप सब बहनों से, माताओं से पूछता हूं, क्या आप समझते हैं ऐसी कोई एक बात, ऐसी कमजोरी की कह लो, कोई एक डिफिकल्टी की कह लो, या एक कोई ऐसे संस्कार हैं जो आप चाहते हैं छोड़ना, ऐसा जो सोचते हैं, जरा हाथ खड़ा करो, जो छोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं बाकी है, भले ना करो, उनको पास विद ऑनर पहले से बाबा दे देगा सर्टिफिकेट पर, जो छोड़ना चाहते हैं अधिकतर सब हैं, और मैं समझता हूं सभी पढ़ी लिखी बहने हैं, ठीक है, आपके पास नोटबुक है, सबके पास है, अभी बाबा को दो शब्दों में चिट्ठी में लिखो, कि बाबा ये मेरे विशेष ये संस्कार जो मैं इनको छोड़ना चाहती हूं, लिख लो अभी। मैं एक मिनट साइलेंस करूंगा और आप एक मिनट में वो बातें दो तीन जो भी हो वो लिख लीजिए। और दिल से लिखना कि बाबा इनको बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं। सभी ने लिख लिया। अच्छा, सबसे पहली तो ये खुशी की बात है कि इतनी हिम्मत रखी है आपने कि सच्ची दिल से बाबा को देने के लिए। ठीक है, सहज तरीका क्या है इसका? सहज सरल तरीका है, फिर आगे लिखिए बाबा को ही, चिट्ठी में लिखिए, बाबा आज ये सच्ची दिल से आपको समर्पित करती हूं, आज के बाद ये संस्कार मेरे संस्कार नहीं रहेंगे। क्योंकि पुराने संस्कार मिटाने हैं तो उसको जड़ से निकाल के फेंकना पड़ेगा। अव्यक्त मुरलियों के अंदर बाबा ने बहुत रीति से, कई ढंग से बहुत समझाया हुआ है कि इनको मिटाने का तरीका, बाबा को जो चीज दे दी वो किसकी हो गई? आपकी तो नहीं रही ना, हमारी नहीं है। ये संस्कार वास्तव में थे भी नहीं हमारे। जो कमी के संस्कार हैं वो हम बच्चों के नहीं हैं, ये तो द्वापर से माया के संस्कार ऐड हो गए हमारे अपने संस्कारों में, वो हमारे नहीं थे। क्योंकि हमारे ओरिजिनल संस्कार होते तो हमें उससे सुख मिलता, पर वो तो दुख देते हैं। इस बात को अगर हमने एक बार महसूस कर लिया कि जो नेगेटिव संस्कार, जो अच्छे संस्कार नहीं हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो मायावी संस्कार हैं। हमारे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? आदि और अनादि संस्कार कौन से हैं? याद हैं? अभी आप अपने वो भी लिखो कि मेरे तो अनादि और आदि संस्कार ये हैं, लिखो। संपूर्ण पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, उस स्वरूप के संस्कार, ये है अनादि काल के जो सदा रहते हैं। और वो ही शीशा बनकर के हमारे सामने आते हैं कि ये आपके संस्कार या ये आपकी एक्टिविटी, ये आपका कर्म राइट नहीं है, ये शीशा है। और आदि संस्कार कौन से हैं? जब सत्युग में आए तो आदि काल के संस्कार कौन से हैं? याद हैं? देखो कितने सुंदर संस्कार हैं, बहुत सुंदर। देवी देवताओं की सुंदरता, सिर्फ शरीर की कोमलता, नैनों की ऐसी सुंदरता, या उनका वो जो सजा सजाया रूप है, केवल वो नहीं है। उनके सच्चे संस्कार, सत्युग अर्थात सात्विक संस्कार, सतोप्रधान संस्कार हैं, वो कौन से हैं? सर्वगुण संपन्न। एक एक करके लेंगे अभी। सर्वगुण संपन्न यानी किसी गुण की कमी नहीं। आप सोचिए, आज इस समय कोई ना कोई गुण की कमी होती है तो जिसमें वो गुण होता है उसके आगे सिर झुकता है। लेकिन सत्युगी देवी देवताओं को सदा, कभी झुकते हुए देखा उनको? नहीं, सबको झुकाते हैं। इतना उनका सम्मान अपना है, अपने सम्मान में सिर ऊंचा रखते हैं कि सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। द्वापर से लेकर के राजाएं महाराजाएं भी उनकी पूजा करते हैं, उनके आगे नमन करते हैं। तो आप जरा सोचिए कि बाबा से जो हमें वर्षा अनादि संस्कारों का और फिर आदि संस्कारों का मिलता है, उसमें पहला है सर्वगुण संपन्न, हरेक गुण में संपन्न। सर्वगुण संपन्न, फिर दूसरा क्या है? 16 कला संपूर्ण। दिलवारा मंदिर देखा है आप सभी ने? नहीं देखा तो जाके देखना, इस बार खास देखना कैसे 16 कला दिखाई है वहां। बहुत सुंदर ढंग से आर्टिस्टों ने उनको वहां पर दिखाया हुआ है। 16 कला संपूर्ण, किसी कला में भी कमी नहीं। नहीं तो कहते ना, इसमें विशेष कला है गीत गाने की, इसमें विशेष कला है भाषण करने की, इसमें विशेष कला है डांस करने की, इसमें विशेष कला है पेंटिंग करने की, इसमें विशेष कला है फूलों को सजाने की, ऐसे एक एक बात को लेते हैं। लेकिन जितनी भी कलाएं हैं, सर्व कला संपूर्ण, सिर्फ 16 कला ही नहीं है, सर्व कलाओं में संपूर्ण। थोड़ा इस पर विचार सागर मंथन और करेंगे ना तो आपको मजा आएगा उसमें। जो बाबा बार बार मुरली में कहता है, बच्चे जो मैं ज्ञान देता हूं इसको मंथन करो, तो जैसे जैसे उस पर विचार करते हैं तो बड़ा खुशी होती है कि बाबा ने हमें क्या दिया है, क्या बना देते हैं, कहां से कहां पहुंचा देते हैं। सोचेंगे भी नहीं, कभी स्वप्न भी नहीं था ऐसा। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये है जो नए संस्कार फिर से हम इमर्ज करते हैं अपने अंदर। तो पहले वाले मिटाने की बात है, उसके अंदर भी खास योग अग्नि से पास्ट का पूरा हिसाब किताब भस्म करना। मिटाने के अंदर 63 जन्मों का कोई भी रहा हुआ हिसाब किताब वो भस्म करना इस भट्ठी का लक्ष्य है। और फिर इसके साथ में 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, और फिर आगे क्या है जो मिटाने वाली बात है, वो आती है संपूर्ण निर्विकारी। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आ जाती है तो बहुत खुशी होती है, बड़े लाइट हो जाते हैं। क्यों? 5 विकार हैं जैसे पत्थरों की तरह। कोई बहुत पत्थर अपने सिर पे ले ले, बोझ उठा ले, चल सकेगा, दौड़ सकेगा, उड़ सकेगा? नहीं। तो आज की इस भट्ठी में ये खास बात आपके ध्यान पे दे रहे हैं कि अगर हमारे अंदर कोई भी विकार है, अहंकार है, दृष्टिवृत्ति में अभी तक भी कोई कमजोरी है, मोह का संस्कार है, क्योंकि आम तौर पे जब आप भाषण सुनेंगे ना किसी का भी तो कहेंगे माताओं में विशेष संस्कार मोह का होता है। अब मोह है या प्यार है ये तो माताएं खुद जानती हैं, ये भी सब जानते हैं कि प्यार के बिना नहीं रह सकते, दुनिया नहीं चल सकती है, सच्चा प्यार चाहिए। दादियों के साथ क्यों इतना हम उनके पास जाना चाहते हैं, क्या है उसमें? उनका मोह तो नहीं है हमारे प्रति, फिर भी उनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। बाबा एकदम न्यारा प्यारा रहता है फिर भी उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर उसका प्यार ना हो तो हम उसके पीछे जाएंगे? यहां सब किसके लिए आए हैं? बाबा के कारण आए हैं, बाबा के प्यार के कारण आए हैं। अगर आपको पहले से कहते ना संस्कार परिवर्तन करने के लिए आओ तो कोई नहीं आने को तैयार होता, भाई हम आप ही कर लेंगे। लेकिन बाबा का प्यार क्या है? बाबा का प्यार है, भारत की माताओं के भी वो गायन हैं, अपने बच्चों को क्या से क्या बनाया उन्होंने, ऊंचा उठाया, बहादुर बनाया, शक्तिशाली बनाया। तो बाबा ने वो सारी विशेषताएं मात पिता के रूप से हम बच्चों को भरी हैं, और उसमें खास जिसको सन्यासी भी नहीं छुड़ा सके। घर गृहस्थ में रहते हुए पांच विकारों पर विजय प्राप्त कराना ये कोई नहीं करा सका। तो बाबा ने लक्ष्य दिया, नर ऐसी करनी करे नर श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का गायन है वो संपूर्ण निर्विकारी। ये नहीं कहा उनके अंदर थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए या दूसरों के लिए कोई मोह रह गया है, ये नहीं कहा। हां, सारी प्रजा के साथ उनका इतना प्यार है कि सबको अपने बच्चे मान करके चलते हैं, पर मोह नहीं है, अपने बच्चों के साथ भी मोह नहीं है। तो बाकी के जो छोटे छोटे विकार हैं वो होंगे, हाँ बाकी होंगे, लोभ लालच होगा नहीं, क्यों? धन धान्य संपन्न है। आप में से अजमेर का कभी किसी ने चक्कर लगाया है? अजमेर में सत्ययुग का मॉडल बना हुआ है, एक स्वर्ग का मॉडल, हाँ देखा है आपने। वहां पर जो राजा महाराजा हैं उनके भी महल हैं, और जो उनके प्रजा में हैं वो उनके भी महल हैं, सोने के महल हैं। ये नहीं कि कोई उनमें वो दूसरे जो हैं वो तांबे के बने हों, चांदी के बने हों, नहीं। ये ठीक है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहता है, पर सबको सत्ययुग में इतना ऊंच पद मिलता है। जब सब कुछ प्राप्ति है तो फिर लोभ किस चीज का रखेंगे? स्थूल में भी कोई कमी नहीं, सूक्ष्म में भी कोई कमी नहीं, और फिर इसके साथ में शरीर, पांच तत्व कैसे हैं वहां? सतोपर्दा, सतोपर्दा। बाबा तो बहुत प्यार से महिमा करते कि जन्म भी जब बच्चे का होता है तो रुलाते नहीं है उसको, यहां तो थप्पड़ मारते हैं ताकि थोड़ा बोलना शुरू करे, पता नहीं बाद में गुंगा ना रह जाए। नहीं, जन्म से ही मुस्कान, देवी देवताओं के चित्र देखते हैं ना, श्री कृष्ण को कभी रूखा सूखा देखा किसी ने? कोई भी चित्र देख लो उसका, सदा मुस्कुराते हुए, ऐसी मुस्कान जो सबको खींचती है। क्या है उसके अंदर? सबके साथ निश्चल प्यार है, छल वाला नहीं है। भले ही कलयुग के कवियों ने ऐसे गीत बना दिए जिसमें उसको छलिया कह दिया, पर वो छलने वाला नहीं है, सबको प्यारा लगता है। कारण, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, कोई विकार नहीं है ना। बल्कि बाबा ने तो बहुत स्पष्ट मुरलियों में कहा है, ये जो उसकी महिमा के रूप में कुछ बोलते हैं ना, उसमें भी वास्तव में वो महिमा नहीं है। तो संपूर्ण निर्विकारी, कोई एक भी विकार नहीं, जरूरत ही नहीं है इन सब बातों की, आवश्यकता नहीं है। इतनी आत्मा कंचन बन जाती है, इतनी आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है, इतनी आत्मा, उसको बाबा इंग्लिश में कहते थे फ्लॉलेस, हीरा ऐसा बन जाती है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है। ऐसे संस्कार परिवर्तन चाहिए, ऐसे संस्कार अपने बना लिए हैं या बनाने हैं? बनाएंगे, जब बनाएंगे जरा हाथों खड़ा करो, आज से ही बनाने हैं, कल से नहीं। ऐसी हिम्मत रखने वाली शक्तिशाली जो आत्माएं सभी हैं, सुबह मुरली के टाइम तो बहुत महिमा सुनी आपने अपनी, दादी जानकी ने भी कल बहुत महिमा की, शिव शक्तियां हैं। तो हंसते थे दादी, कभी कभी कहती थी शिव शक्तियां इतनी हैं जो एक कॉकरोच आ जाए तो डर जाएंगी बस। नहीं, शिव शक्ति पांडव सेना किस बात के लिए मशहूर है? है अहिंसक सेना, पर सेना वो जो रावण के ऊपर विजयी होती। पांच विकार इस संसार में सब जगह पर उसका राज, आप देख लो, संसार के किसी कोने में चले जाओ, किसी कोने में जाओ, सब जगह पर पांच विकारों का राज। और आप सारे विश्व को पांच विकारों से मुक्त कर दो, कितना बड़ा कार्य है। सोशल वर्क करने के लिए कहते हैं ना माताओं को, समाज की सेवा करो, समाज की सेवा करो, ये सेवा अगर की तो सबसे बड़ी समाज सेवा ही है। तो आज समाज सारा दुखी किस बात से है? किस बात से दुखी है? इसी पांच विकारों की बीमारी से सारा संसार उसी में ग्रस्त। लेकिन वो जाएं कैसे? अपने संस्कार भी पुराने मिट जाएं और संसार के भी ये सारा वातावरण चेंज हो जाए, उसके लिए किस चीज की जरूरत है? कौन सी शक्ति चाहिए? शिव शक्तियां किस बात के लिए मशहूर हुई? योग बल की शक्ति। ऐसा योग बल, बाहुबल नहीं है, वो जो दिखाते हैं इतनी सारी, अब यहां नवरात्रे आते हैं तो देवी को सजाते हैं ना, हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी वो रूप बना करके बिठा देते हैं बड़े बड़े। वास्तव में आत्मा इतनी शक्तिशाली बनती है कि अंदर कोई भी कमजोरी नहीं रहे, संकल्प तक भी नहीं। अभी थोड़ा नोट करिए कि परिवर्तन क्या आना चाहिए। परिवर्तन चाहिए संकल्प तक भी पांच विकारों पर विजय हो, संकल्प में भी नहीं आए। स्वप्न में भी नहीं आए, बल्कि पॉजिटिव हों। बाबा कहते थे बच्चे स्वप्न भी ऐसे आए जो आने वाली दुनिया के स्वप्न हों, सत्युग के स्वप्न हों, ना खुद डरें नींद में और ना डर के कारण आप चिल्लाएं तो दूसरे भी डर जाएं पास वाले, वो नहीं होना चाहिए। वो जो ऐसा जो करेंगे तो वो शक्ति कहलाएंगे क्या? शिव शक्ति। तो अपने अंदर ये दृढ़ता चाहिए, पांच विकारों को मन तक जीतने की दृढ़ता का संकल्प करना होता है। तो आज शिव शक्तियों, बहनों, माताओं, आज ये संकल्प लेना है कि आज के बाद बिल्कुल हम इस बातों को संकल्प में भी नहीं आने देंगे। जैसे ही संकल्प में आए ना, उसका सहज तरीका बता देता हूं। बाई चांस संकल्प उठने लगे, कोई ईर्ष्यावश, कोई द्वेषवश, कोई मोहवश, क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे? बाबा की तरफ देखना। चित्र तो सब अपने पास रखते हैं ना, बाबा का, दोनों का रखते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का, दोनों का रखते हैं, क्योंकि दोनों जुदा नहीं होते हैं, दोनों साथ में होते हैं। जब बाबा से मिलने आते हैं तो किससे मिलते हैं? बाप दादा से मिलते हैं। तो बाबा को सामने ला करके एक सेकंड में, बाबा का इतना सहज तरीका बताया हुआ है, एक सेकंड, बाबा ये फिर संकल्प में आ रही है बात, जैसे ही आपने ये सोचा वो बाबा को मिल गई, आप फ्री हो गए। थोड़ा क्या करेंगे उस समय? हैरान नहीं होना। कई बार ऐसा होता है, कोई कमजोरी का संकल्प आता है ना, तो उसके बारे चिंता करने लगते हैं, वो जितनी चिंता करते हैं वो और बढ़ता है। जैसे कोई शरीर की बीमारी होती ना, बीमारी थोड़ी सी होती है फिर उसकी चिंता करने लगो तो बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, जब तक डॉक्टर आए पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगी, और डॉक्टर आकर के थोड़ा सा देख करके कहेगा आपका तो बिल्कुल ठीक है, इतना ही उसने कहा, ब्लड प्रेशर जो पहले 175 तक पहुंच गया था ना, वापस नॉर्मल हो जाएगा। अज्ञानता के कारण कई बातें मन को बहुत हैरान करती है। तो बाबा ने बड़ा सहज तरीका बता दिया, और प्रैक्टिकल भी लगता है कि जैसे ही कोई ऐसा पास्ट के संस्कारों का संकल्प मन में आने लगे तो अपने आप को स्मृति दिलानी है। बाबा ने कहा जितना स्मृति स्वरूप बनेंगे उतना आप उड़ती कला में रहेंगे। तो स्मृति स्वरूप का सहज तरीका क्या है? बाबा के चित्र की तरफ देखना और बाबा से दिल ही दिल में बात कर लेना, बाबा मुस्कुराते हुए, हाँ हंसना थोड़ा अपने ऊपर उस समय, बाबा ये मैंने आपको दे दिया संस्कार, फिर ये आप मेरे पास भेज रहे हो। बाबा क्या कहेगा? बच्चे मैं तो नहीं भेजता, मैं तो आपको शुद्ध अच्छे संस्कार देता हूं। हाँ, बच्चों को मां अच्छे संस्कार देती है तो माता पिता के रूप से बाबा कौन से संस्कार देगा? नेगेटिव नहीं देगा। पर जैसे ही बाबा को सामने देखा और ये बात की, वो संस्कार मिट जाएगा, चला जाएगा। और इसका एक मैं पहले से आपको बता दूं, जैसे डॉक्टर पहले से बता देते हैं ना, इतने दिन में इतनी इंप्रूवमेंट होगी, इतने दिन में इतनी होगी, 3 सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसे बता देता हूं। अगर आप ये युक्ति अपनाएंगे तो आप यहां से जाने से पहले इन सब बातों से मुक्त हो जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ एक ही बात आपको पक्की करनी है कि जो बाबा को संकल्प दिया है या बाबा के सामने संकल्प किया, उसमें दृढ़ रहना है, कमजोर नहीं होना उसमें। कितनी माया हिलाए, कितना आपके सामने कोई गुस्सा करने वाला आ जाए, उस समय क्या करेंगे? बहुत नाराज हो रहा है, बहुत गाली दे रहा है आपको, क्या करोगी उस समय? क्या करेंगे? बाबा की याद में उसको, बाबा कहता था ठंडा जल उसके छींटे दो, ये नहीं कि वो जल लेकर के ऐसे छींटे देना, लेकिन उसकी तरफ शुभ भावना रख के कि इस बेचारे को इस समय वो आपे में नहीं है, सोल कॉन्शियस नहीं है, आत्म स्वरूप में नहीं है, इसलिए इसको ऐसा हो रहा है। बाबा इसकी बुद्धि को, इसको सद्बुद्धि दो। वैसे भी तो वो प्रार्थनाओं में कहते ना, हे भगवान इनको सद्बुद्धि देना। तो अभी जब बाबा के साथ आपको सहज पता लग गया कि कैसे बाबा के साथ कम्युनिकेशन करनी है, मोबाइल भी रखने की जरूरत नहीं है, बाबा के लिए मोबाइल नहीं चाहिए, लेकिन अपना संकल्प जो है उसका यूज करना है। बस एक सेकंड, बाबा कहता है, मेरा बाबा भी नहीं कहो, बा बा बस। तो गुजराती में बाबा कहा तो दोनों आ गए, मात पिता। बा गुजराती में बा किसको कहती हो? मां को। दो बार कहा तो बाबा भी आ गया, तो मम्मा भी आ गई। तो सहज सरल तरीका कि जब कोई नेगेटिव संस्कार उत्पन्न हो, एक सेकंड बाबा को देना। लेकिन वो उत्पन्न हो ही नहीं, उसका क्या करें? उसका एक ही तरीका है, दृढ़ संकल्प के कंसंट्रेशन से। जैसे सूर्य की किरणों को कंसंट्रेट करो तो नीचे कागज होता है उसको जला देता है ना, देखते हैं आप शीशे से अगर करो तो, कभी देखा होगा। आपके ऊपर कहीं वो किरणें आ जाएं तो आपसे सहन नहीं होंगी, जल जाएगी स्किन उस समय। तो बाबा ज्ञान सूर्य है, उसके साथ मन लगा के उसकी किरणों को, उस संस्कारों को जला दो एकदम बस। आपके पास्ट के संस्कार रहेंगे नहीं, भस्म हो जाएंगे। बाबा तो कहता था उसकी जो भस्म है ना, उसको भी नक्की में डाल दो जाकर के। भावना तो वही है कि इसको मन से निकाल दो। और उसका तरीका तीन बातों को खास। पहली बात, ये पक्की करो कि ये संस्कार मेरे अनादि नहीं है, ये द्वापर युग से आए हैं, मायावी संस्कार हैं। मेरे अनादि संस्कार तो वो हैं जो मेरे बाप के संस्कार हैं, जो मेरे मात पिता के संस्कार हैं, वो मेरे संस्कार हैं। हाँ, बाबा के अंदर पांच विकारों में से कोई संस्कार है? हाँ, बाबा में अहंकार है? बाबा आकर के कैसे याद प्यार देता है? हाँ, लास्ट में क्या कहता है? मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को, मात पिता का याद प्यार। और उसके बाद क्या कहता है? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते किसको करते हैं? जो अपने से बड़ा होता है। तो बाबा अपने बच्चों को अपने से भी बड़ा बनाता है, कहता है देखो मैं सिर्फ परमधाम का मालिक रहता हूं, और आप बच्चे मेरे परमधाम के भी मालिक बन जाते हो और सत्युग के भी मालिक बन जाते हो, मेरे से भी बड़े हो। फिर हम क्या जवाब देते हैं? बाबा लेकिन उसके फल स्वरूप आधा कल्प तो आपकी पूजा ही करते रहते हैं, द्वापर से क्या करते हैं, मंदिर बनाते रहे, पूजा करते रहे। तो ये बच्चों की बाप की रूह रूहान बहुत मजे की है। लेकिन इस समय जो हम खास भट्ठी कर रहे हैं, और आज मोहिनी बहन ने संदेश सुनाया, समय की पहचान दी, सब बातों को सामने रखो, तो बड़ा उमंग चाहिए, डरना नहीं है। देखो मैं एक बात खास सभी को कहता हूं, भाइयों को भी कहूंगा, बहनों को भी कहूंगा, माताओं को भी कहूंगा, डर के कारण कोई कार्य करेंगे वो उसमें कभी भी सदाकाल के लिए सफल नहीं होंगे। आप सफल तब होंगे जो पहले समझ लेंगे कि इसकी आवश्यकता है, जरूरत है। दूसरा है इसकी विधि जो है वो यथार्थ होनी चाहिए, और तीसरा है दृढ़ता चाहिए। दृढ़ संकल्प से जब आप करेंगे तो सफल होंगे। तो अपने पास लिख लीजिए, अभी ये तीनों बातें लिखो जो अभी आपको बताई हैं, लिख लीजिए, और लास्ट में लिखिए सफलता हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, ये पक्का करो बस। कभी डरेंगे नहीं, कभी हैरान नहीं होंगे, कभी आपको अशांति नहीं होगी, सदा मुस्कुराएंगे बस। सफल जीवन बनाना, दिव्य जीवन बनाना, दिव्य संस्कार बनाना, उसमें सफल होना, ये हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार से बनते हैं, मांगने से नहीं, बाबा से मांगते नहीं हैं, हमारा अधिकार है। मांगने के लिए बाबा ने क्या कहा है? मांगने से मरना भला। तो वो तो मरे हुए हैं दुनिया में बहुत सारे, उसका क्या करना अभी। तो इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा स्मृति स्वरूप बनाइए, जितना स्मृति स्वरूप रहेंगे उतना सफलता मूर्त बनेंगे, ये भी नोट कर लो। जितना स्मृति स्वरूप रहेंगे उतना सफलता मूर्त बनेंगे, और सफलता मूर्त बनना हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, और उसके फल स्वरूप हमारा पास्ट का कोई भी संस्कार हमें दुख ना दे। बस ये आज के दिन विशेष ध्यान देना है, संकल्प लेना है कि बीती सो बीती, जो अभी तक बीत गया उसकी चिंता छोड़ो, उस वापस वो कल्प के बाद जब आएगी तब देखेंगे। पर आज से फिर नई एक उमंग, नया उत्साह, नया जीवन। बिल्कुल, तो क्या कहेंगे आपको देख करके क्या सिद्ध होगा? फिर चेहरे को देखेगा कोई आपके तो क्या नजर आएगा? हाँ, शीशे को देखेंगे तो क्या नजर आएगा? बाप का गुणों का स्वरूप नजर आएगा। कहते हैं ना, हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, हर एक चाहता है, हर एक बच्चे चाहते हैं, माताएं भी चाहती हैं, भाई भी चाहते हैं कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और बाबा ने भी इस बार कौन सा वर्ष का नाम दिया हुआ है? हाँ, याद है इस वर्ष का नाम क्या है? परमात्म शक्ति अनुभूति वर्ष, ठीक है ना? तो पहले तो कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम, पहले अपने से तो शुरू करें ना। परमात्म शक्ति तभी सिद्ध होगी जो हम अपने कमजोरियों पर विजय पाएंगे, तब कहेंगे परमात्म शक्ति सचमुच काम कर रही है। और वो है हम बच्चों के जीवन से। जब हम अपनी कमजोरियों पर विजयी बन गए, पास्ट के संस्कारों को मिटा दिया और भविष्य के संस्कार धारण कर लिए पूरे, हाँ, उसका तरीका क्या है? अभी आज थोड़ा आपको थोड़ा परिवर्तन करेंगे। माता रूप से आपको बचपन रूप में ले जाना चाहता हूं मैं। हाँ, छोटे बच्चों को क्या पसंद होता है सब जानते हैं। मेले में जाएंगे तो क्या करेंगे? उनको नई नई ड्रेस चाहिए, ठीक है, रंग बिरंगी ड्रेस चाहिए उनको। अगर दिन में तीन बार चेंज कर दो तो सबसे अच्छा, नहीं तो कम से कम रोज एक ड्रेस तो चेंज कर दो उसकी। बहनों में भी जो बहुत फैशन करती है ना, उनकी एक दिन की एक साड़ी होती है, दूसरे दिन की दूसरी, सात दिन की सात साड़ी रखती हैं। यहां आके व्हाइट पहन लेते हैं, कारण क्या है? बाबा ने व्हाइट क्यों पहनाया है मालूम है आपको? व्हाइट के अंदर सातों ही रंग आ जाते हैं, इसलिए सारा सप्ताह आप जैसे सातों रंग पहनते हो। तो बचपन में अगर आप रहेंगे तो बच्चे जो हैं, पहली बात है देखो, छोटे बच्चे सबको प्रिय लगते हैं, देखा है आपने? ये नहीं कहेंगे ये मेरा बच्चा है, ये तेरा बच्चा है, नहीं। और वो बच्चे भी इतने इनोसेंट होते हैं, जिसने उनको प्यार से थोड़ा बुलाया उसके बन जाते, ऐसे है ना? तो बचपन के संस्कार अपने धारण करें तो क्या हो जाएगा? एकदम मन पवित्र बन जाएगा, पावन बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा, इनोसेंट बन जाएगा। इसलिए जो ऐसी बातें जिसको हमें जिसकी बदबू नहीं चाहिए, उससे इनोसेंट बन जाएं तो दिव्य गुणों का सेंट सदा लगा रहेगा। और दूसरा है, बुद्धिवानों के बुद्धिवान के बच्चे हैं हम, छोटे बच्चे नहीं हैं फिर, बुद्धिवानों का बुद्धिवान, उनकी स्मृति से आद मध्य अंत का ज्ञान सदा बुद्धि में रहता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास्ट के संस्कार मिट जाएं और हमारे अंदर इतनी शक्ति भरी रहे कि हमारे सब कर्म जो हैं उसका बीज जो बोएं वो श्रेष्ठ कर्म का बीज बोएं, तो सदा ज्ञानी तो आत्मा होकर के रहने का संस्कार धारण करना जरूरी है। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है? अज्ञानी कर्म करने के बाद पछताता है और ज्ञानी कर्म करने से पहले सोच समझ करके उसके आद मध्य अंत का पूरा ज्ञान बुद्धि में रख करके फिर कर्म करता है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? वो पछताएगा नहीं कभी, वो खुद भी खुश होगा, उसकी आत्मा सदा प्रफुल्लित रहेगी और वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। उसकी मिसाल देख करके, आज आप सब बहनों को देख करके जब आप ट्रेन में आते हैं, प्लेन में आते हैं, आपके व्यवहार को देख करके कितनी सेवा होती है आप लोगों को पता नहीं है उसका। जिस तरह से आप प्रेम से चलते हैं, बात करते हैं, किसी को थोड़ा बहुत भावना से, प्यार से, रिस्पेक्ट से जब किसी को बुलाते हैं, ऐसा दुनिया में कोई करता नहीं है। जब पहले पहले हम ज्ञान लेना शुरू किया था बॉम्बे में, तो मेरे को तो सबसे पहले वही बात कि ये बहनें जो हैं ये हैं कहां से आई हुई, ऐसे तो कभी देखी नहीं है, इतना मीठा बोलते हैं, ऊंचा कभी बोलते नहीं जोर से, इतना प्यार से बोलते हैं आप। और मम्मा ने जब पहली बार एक महीने के बाद मम्मा मिली थी, पहली बार अपने पास बुला के प्यार से दृष्टि दी और टोली मुख में खिलाई, तो मैंने कहा मम्मा मुझे ऐसे लगता है मेरे को खोई हुई मां वापस मिल गई। मम्मा कहती ये तो अलौकिक संबंध है, मेरे को ज्ञान नहीं था लौकिक क्या होता है अलौकिक क्या होता है। मैंने कहा जो है बहुत अच्छा। और मम्मा ने फिर देखो सरस्वती का गायन है, किस चीज की देवी है? विद्या की देवी भी है। उसके साथ में भी कहते हैं कि भाई जब कोई अच्छा स्पीच वीच देता कहते इसके जबान पर सरस्वती है, सुनते हैं ना, तो आपको ये जानकर हर्ष होगा कि मम्मा ने मेरे को स्पीच देना सिखाया था। किसी जगह निमंत्रण था बहनों को, जाना था उनको भाषण करने, पर वो रात का टाइम था तो उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे, बॉम्बे की बात, तो मम्मा ने कहा निर्वैर को भेज दो। मैंने कहा मम्मा मैं तो कभी भाषण किया नहीं है, कोर्स कराता था 7 दिन का। तो मम्मा ने कहा इधर आओ मैं अभी सिखा देती हूं। तो ऐसे ही सोफे पर मम्मा बैठी थी और ऐसे अपने पास बिठा लिया, मेरे ऐसे कंधे के ऊपर हाथ रख दिया और मुझे सिखाया कि जब कोई भी बात कहीं जो टॉपिक होती है भाषण करने के लिए, पहले उस टॉपिक की महिमा करो कि यह आपने बहुत अच्छी टॉपिक रखी है, वो टॉपिक थी विश्व शांति की, फिर उसके बाद आवश्यकता क्या है? आज विश्व में शांति नहीं है क्या जो आप विश्व शांति लाना चाहते हैं? ऐसा कोई टाइम था जो विश्व में शांति थी? वो कब था? उनको तो पता नहीं है, फिर आप ज्ञान दे सकते हो सत्ययुग से लेकर के। फिर उसके बाद आगे कहां चली गई वो? 5 विकार आने से अशांति हो गई। फिर कैसे अशांति दूर हो जब पांच विकार संसार से फिर बस खत्म हो, उसके लिए परमात्मा की शक्ति चाहिए। हाँ, आज का जो विषय है ना उससे कनेक्टेड है ये टॉपिक। फिर परमात्मा का परिचय देके और तीन मिनट योग कराना। तो बहनों, पहली स्पीच जो मैंने दी वहां बड़े बड़े वो क्या कहें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए पीएचडी और कोई कुछ बड़े बड़े गुरु और वो, और मैं सबसे छोटा लड़का 20 साल का, 40 मिनट भाषण किया मैंने, और बाद में सबको जो हमारे चित्र हैं ना, कल्प वृक्ष और त्रिमूर्ति गोला, उसकी कापियां थी, तो वो हमने कहा अगर किसी को चाहिए तो ले लो। वो सारी पब्लिक हमारे पास आ गई लेने के लिए। लेकिन कहने का भाव क्या है कि मम्मा ने वो संस्कार दिया और बाबा ने लिखने का संस्कार दिया। जो मैगजीन के लिए लेख लिखता हूं, एडिटोरियल लिखता हूं, बहुत इच्छा थी कि मैं जाके कॉलेज में ज्वाइन करूं। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लिखना शुरू कर दो। पर वो भी पहले पहले दादी, जो उस समय हमारी दादी पुष्प शांता थी, मैंने एक बार लिखा लेख, उनको सुनाया, कहा ठीक है लेकिन और इसको अच्छा लिखो। फिर लिखा, कहा पहले से अच्छा है लेकिन और दोबारा लिखो। फिर तीसरी बार लिखा, कहा काफी अच्छा है लेकिन अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। फिर चौथी बार जब लिखा तब कहती अब ठीक है, अब जगदीश भाई को भेज दो। तो आप सोचिए वो भी संस्कार किसने दिया मुझे। हाँ, मैं उनको अपनी रूहानी माता जी कहता था। तो संस्कार देने वाले तो माताएं हैं, पर कौन सी माताएं जिनमें खुद संस्कार होंगे। हम अगर संस्कारी नहीं हैं तो हम बच्चों को कैसे देंगे। और उसमें भी जब आपको इतना बड़ा टाइटल मिल गया, कौन सी माताएं हैं, हाँ, जगत माता, जगतम्बा बन गई। तो जगतम्बा के तो संस्कार बहुत बहुत विशाल हृदय चाहिए, सबकी कमजोरियों को समा देना, हाँ, किसी की कमजोरी को चित्त पे नहीं रखना, उसका वर्णन नहीं करना। हाँ, माताओं की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी जाती है जानते हैं ना, बातचीत शुरू करेंगे किसी की अच्छाई से और बाद में कहां चले जाएंगे, कौन से जंगल में खो जाते हैं। तो आज ये अपने अंदर दृढ़ता का संकल्प लेना है कि इस बीमारी से हम सदा काल के लिए छूट जाए। क्यों, ये महसूस करने की बात है। बाबा ने कहा आप बच्चे इतने महान हो, सारे संसार में आपके जैसा महान कोई नहीं। तो महान आत्माओं का एक एक सेकंड जो है उसकी बहुत कीमत है, आपका एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी महसूस करने की बात है। अगर आप अपने समय को सफल करना चाहते हैं, क्योंकि समय भी बहुत बड़ा धन है, जैसे स्थूल धन की सफलता की बात आती है, बुद्धि का धन है उसकी सफलता की बात आती है, ज्ञान का धन है उसकी सफलता की बात आती है, समय, इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर हरेक ब्राह्मण के लिए सबसे कीमती चीज है। इसका एक भी सेकंड आपका व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाना चाहिए। ये अगर महसूस किया तो आप कभी भी व्यर्थ बातों में नहीं जाएंगे। कोई आएगा ही नहीं आपके पास व्यर्थ बात। जब कोई आएगा, कोई बात शुरू करे ना, तो उसको एक सेकंड में बहुत प्यार से, जैसे दादी जी दृष्टि देते थे ना, प्यार से मीठी दृष्टि दे के, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, हम उस पर बुद्धि लगाएं, ये इन बातों को छोड़ो, बस कितना टाइम लगा उसमें। तो ऐसा किसी का आपने परिवर्तन कर दिया तो कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। सेवा की बात आती है ना, नहीं तो आम तौर पे माताएं बहनें समझती हैं भाई हम क्या सेवा कर सकते हैं, हम तो घर गृहस्थ में रहती हैं। नहीं, घर गृहस्थ सबसे बड़ा चैतन्य म्यूजियम है माताओं बहनों, जहां आप रहते हो वहां तो सबसे बड़ा सेवा का स्थान है। इतने रिश्तेदार आपसे मिलते हैं, इतने लोग आकर के आपको देखते हैं, आपकी बोलचाल, आपकी दृष्टि, आपका व्यवहार बहुत बड़ी सेवा करता है। लेकिन उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप भी अगर नेगेटिव डाल दिया, उसको क्या कहा जाएगा? एक बाल्टी दूध हो और उसमें एक ड्रॉप, एक टीपा कौन सा पड़ जाए, जहर का पड़ जाए, तो क्या होगा? वो बाल्टी की बाल्टी सारी खराब हो जाएगी। तो इसलिए आज के दिन विशेष सो परिवर्तन का दिन है, संस्कार परिवर्तन का दिन है, और उसमें दृढ़ संकल्प लेने का दिन है कि हम अपने आप को 100% 100% 90 नहीं, 80 नहीं, 75 नहीं, 100% संपूर्ण बनाने का संकल्प ले। जब इतना आप ध्यान रखेंगे तो आप सफल होंगे। अगर आपने थोड़ा सा कम ध्यान रखा तो फिर देखना क्या होता है, वो थोड़ी सी बात फिर बढ़ जाती। ठीक है, अच्छी लग रही बातें? हाँ, क्योंकि मुझे कोई कोई कहते हैं भाई ऐसा टाइम है नींद आ जाएगी। मैंने कहा क्यों नींद आ जाएगी, आए हैं अपनी सच्ची कमाई करने के लिए। कमाई के टाइम तो बाबा कहता था रात के 12-1 बजे तक भी अगर कोई ग्राहक आते हैं तो नींद नहीं आती है, और अगर नहीं ग्राहक आते हैं तो शाम को 5-6-7 बजे भी वो उबासी आनी शुरू हो जाएगी। तो अपने अंदर ये अच्छी अच्छी बातें ये धारण करेंगे, मैं आपको क्या बताऊं, इतना अंदर से अति इंद्रिय सुख महसूस होता है, इतना मन खुश रहता है, दिल से बाबा को थैंक्स देते हैं, बाबा आपने सचमुच हमारा जो जीवन बनाया ये हीरे तुल्य बना दिया। और उसमें विशेष बात ध्यान रखना, दादी का एक विशेष संस्कार मैं आपके सामने रखता हूं। माताओं को टाइम मिलता है घर में बहुत, कोई सारा दिन चक्की नहीं चलाते हैं आप, आजकल तो जरूरत ही नहीं रही उसकी। हाँ, मुरली आपके पास आती है? सभी को मुरली की कॉपी मिल जाती है? नहीं मिलती हो तो बहन जी से कह करके लेनी जरूर। तो दादी का एक संस्कार अगर आपने अपने सामने रख के उसको फॉलो किया तो आपके जैसा सफल कोई होगा ही नहीं। दादी सोने से पहले मुरली पढ़ती थी रात को, फिर बाबा की याद में सो जाती थी। सुबह उठते पहले बाबा को याद करके उसके बाद फिर मुरली पढ़ती थी दिन, फिर क्लास के टाइम तो मुरली सुनते सुनाते हैं, दिन में भी जब फुर्सत मिले अखबार वगैरह कोई ला के देते थे, फोटो दिखाते थे, वो 1-2 मिनट देखा, उसको साइड पे कहेंगे अच्छा मुरली दो मेरी। मम्मा को देखा था 4 बार मुरली पढ़ती थी। एक बाबा से सुननी डायरेक्ट, दूसरी टेप से सुननी, तीसरा जो लिखत होती थी उसको करेक्ट करना, चौथा छपने के बाद फिर उसको देखना। तो किसको फॉलो करेंगी माताएं? हमारे सामने तो जो बड़े मिसाल हैं उनको ही फॉलो करना है ना, दादियों को फॉलो करेंगे ना, क्योंकि अधिकतर इसमें आने वाली सब बहनें माताएं या तो माता हैं या दादी हैं। ठीक है ना, लौकिक रीत से तो दादी बन गई हैं, अभी अलौकिक भी बन जाए तो कितना अच्छा हो, तो डबल ताजदारी बन जाएंगी माताएं सब। बजाओ ताली अच्छी तरह से। अभी चलें, अभी संस्कार मिटाने का तरीका है कि जो हमने ज्ञान को समझा है इसको मजबूती से अंदर धारण करने का तरीका है कि बाबा को सामने रख के बाबा के साथ मन लगा के बैठे। ज्योति स्वरूप बाबा, ज्योति स्वरूप हम। जो मम्मा की बात नहीं दादी सुनाती हैं, चमकीली मां को देखो, तो आप तो इतने सफल हो सकते हो अपने इस पुरुषार्थ में, दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और घर बैठे इतनी सेवा होगी, इसकी बजाय के और कहीं जाना पड़े। हाँ, वो कौन कौन सी जगह है माताओं की? अंबाजी है यहां पास में, ऊपर में अदर देवी है, वो भी माता का मंदिर है। वैष्णो देवी कहां पर जाके बना है? कहीं कहीं बना दिए हैं। आपके उधर साउथ इंडिया में भी बहुत हैं, और कलकत्ता में तो खास देवी का मंदिर है। पर मैं बहुत डरता हूं उस मंदिर से, इतना भयानक रूप। मैंने कहा नहीं, मेरे को ऐसी माता नहीं चाहिए। माता माना जो प्यार की शक्ति से बच्चों में परिवर्तन ला दे, तो दृढ़ता को उसमें उन्होंने दिखाया है। जो मां की दृढ़ता है, कोई संस्कार किसी का परिवर्तन करना है तो दृढ़ता चाहिए, उसको उन्होंने वो रूप दिया, काली का रूप जो बनाया है जिस तरह से। तो अभी हम सब चलेंगे, थोड़ा उड़ेंगे। हाँ, जितना अपने आप को उड़ती कला में रखेंगे उतना आपको सहज लगेगा सब। बाबा की याद भी सहज लगेगी, संस्कारों को परिवर्तन करना ऐसा लगेगा जैसे ये थे ही नहीं हमारे संस्कार। हाँ, जब कभी भी कोई भी बात आए अपने सच्चे स्वरूप में याद में टिक जाना बस। हाँ, मेरे साथ कोई बहस करने कोई आए, बोलने लगे ऊंचा, मन में सोचा इसका फायदा क्या, उसको प्यार से कहा भाई जी मैं आराम से आपकी बात सुनूंगा, ऊंचा बोलने की जरूरत ही नहीं। और आपको खुशखबरी सुनाऊं कि उसके बाद उस भाई का भी वो संस्कार मिट गया, दोबारा मैंने नहीं देखा उसको ऊंचा बोलते हुए। ठीक है, चलें, उड़ें। हाँ, चलिए। क्योंकि संस्कार परिवर्तन होना माना ही उड़ती कला में चले जाना बस। और उड़ती कला सबसे ऊंची कला है। हाँ, बाबा की बातें कभी कभी सुनते हैं, बहनों के भाषण सुनते हैं, तो एक जमाना था पैदल चलने का, फिर जमाना आया कि भाई थोड़ा जंप लगा के आगे चलो, फिर आगे आए कार में बैठो, फिर आगे आए प्लेन में बैठो, फिर आगे आए रॉकेट में बैठ के ऊपर जाते हैं। अभी क्या करेंगे? संकल्प की शक्ति से, संकल्प और कुछ नहीं करना है। हाँ, अपने सच्चे स्वरूप का संकल्प करो, मैं कौन हूं? शुद्ध आत्मा, ज्योति स्वरूप हूं। और ज्योति की दुनिया से आई हूं और बाबा के पास जाके बैठ जाती हूं। देखो टाइम पर रिकॉर्ड बज रहा है, सीधे बैठना, इसी संकल्प में बैठना। ओम शांति। उठने से पहले दो खुशखबरी सुना के जाऊंगा आपको। सुना दूं? अभी आप सब बैठे हैं, गर्मी लग रही होगी इस हॉल में, तो हमारी निमित्त कुछ टीचर्स बहनें, उन्होंने हमारा ध्यान इस बात पे खिंचवाया कि अब दिन ब दिन इस हॉल में अधिक प्रोग्राम चलेंगे, गर्मी भी होगी, तो कुछ करिए इसका। तो आपके अगली बार आने तक इस हॉल को पूरे को एयर कूलिंग करने वाले ठंडा कर दें। किसी ने कहा कितना खर्चा होगा, हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा का इतना बड़ा परिवार है, खर्चे की कोई बात नहीं है बस। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना रोशनदान से हैं, वहां से ठंडी हवा अंदर आएगी और किसी को भी यहां गर्मी नहीं लगा करेगी, चाहे बाबा की सीजन हो, क्योंकि फरवरी से लेकर के थोड़ी गर्मी हो जाती है, तो सारा साल ये हॉल काम में भी आएगा, बाबा के दिनों में भी। इसके साथ में सवाल उठता है कि यहां गर्मी के दिनों में अगर इतने लोगों का प्रबंध करते हैं तो रहेंगे कहां। तो आपको ये भी खुशखबरी सुनानी है कि जो मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है, मनमोहिनी वन जो है इधर से थोड़ा पास में, वहां पर सारे ब्राह्मण परिवार के सहयोग से, बाबा ने कहा ना एक एक ईंट सब लगाते हैं तो महल बन जाते हैं, तो वहां पर 5,000 भाई बहनों का रहने का प्रबंध हो रहा है, क्योंकि ये हॉल है 18,000 का और रहने का इंतजाम है 10-12,000 का यहां, तो बाकी फिर थोड़ा टेंट लगाओ, ये करो वो करो, और उसमें भी आजकल जानते हैं दिन ब दिन रहन सहन सभी का स्टैंडर्ड ऊंचा है, तो वहां पर जो बन रहे हैं ग्राउंड प्लस 5, 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं, 6 बिल्डिंग बनेंगी, उसमें 2 बेडरूम भी हैं, 2 बेड के भी कमरे हैं, 3 बेड के भी कमरे हैं और 5 बेड के भी कमरे हैं, इससे ज्यादा नहीं है, जैसे यहां पर बड़े हॉल हैं वो वहां नहीं है। तो इस तरह से, और आपको एक खुशखबरी ये भी सुना दें कि 9 अक्टूबर दशहरे का दिन है, दशहरे के दिन उसका उद्घाटन रखेंगे, लेकिन आप बहनें माताएं सोचेंगी पर हम देख के जाएं तो कितना अच्छा हो। तो मुन्नी बहन ने मेरे को खुशखबरी सुनाई कि आपकी ये 3 दिन की जो साइलेंस की भट्टी पूरी होगी, उसके बाद आपकी पिकनिक वहां रखेंगे और वहां 2 बिल्डिंग जो बिल्कुल तैयार हो गई हैं वो आप उसका अवलोकन करके आएंगे, देख करके आएंगे कितनी अच्छी बनी है, और आपका मन होगा कि साल में एक बार नहीं हम तो 2-3 बार आकर के यहां रहें। ठीक है, अभी आपका आगे जो प्रोग्राम क्लास का होगा, पर बहुत मन खुश हुआ आप सब बहनों माताओं से मिलने से, और यही एक मेरी इच्छा है, बहुत जिगरी इच्छा है कि आप सभी बहनें जैसे यहां अभी मुस्कुरा रही हो ना, एक दिन भी ऐसा ना आए जो आपकी ये मुस्कान कहीं इधर उधर हो जाए। बस ओम संत,
ओम संत, ओम शांति। आपने निर्वैर भाई के वक्तव्य से देखा कि कैसे वह श्रेष्ठ संस्कारों के धनी हैं, तो निर्वैर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।